हम बात कर रहे थे बच्चों की एज के डिफरेंट लेवल्स में से कि उनके साथ कैसा मामला किया जाए। तो अभी तक हमने अमूमी तौर पे जो बातें की हैं वो पैदाइश से पहले से लेकर बच्चे की 5-6 साल की उम्र की अंदर की है। अब हम देखेंगे कि जब बच्चा तकरीबन 7 साल की उम्र का होता है तो उसके साथ फिर ऑनवर्डली आगे उसकी एज में कैसे डील करना है। यहाँ एक बड़ी मारूफ कहावत है जो आपने भी सुनी होगी कि बच्चे की ज़िंदगी के पहले 7 साल प्यार के होते हैं, उससे अगले 7 साल तरबियत के होते हैं, उससे अगले 7 साल जो हैं उन पे थोड़ी सी अगर सख्ती की जा सके यानी उनको हदों में रखने के हैं, और उसके बाद फिर अगले 7 नहीं सारी ज़िंदगी उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पे। ये एक बात है, हकीकत भी है इसमें। अगर आप देखें तो फितरत का असूल भी यही है कि सारी ज़िंदगी बच्चों के सर पे इंसान जो है वो सवार नहीं हो सकता। तो जो सबसे पहला काम 7 साल की उम्र के करीब करने का है वो है इस उम्र में अब बच्चे को इबादत का शौक़ दिलाना और उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मारूफ रिवायत है कि 7 साल का होने पर अपने बच्चे को नमाज का हुक्म दो और उसको बताओ, और अगर वो 10 साल की उम्र तक होने में ना पड़े तो फिर सख्ती भी करो और अपने बच्चों के बिस्तर अलग कर दो। 7 साल या इससे आगे की उम्र पे अगर आप गौर करें तो जिस्म में तब्दीलियां भी कुछ आती हैं। मसलन अमूमन बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं, कुछ के पहले से टूट जाते हैं। आप जितने चॉकलेट ज़्यादा खिलाएंगे वो जल्दी टूट जाएंगे, लेकिन एक फितरी तौर पे पहले मारूफ था कि माँ के दूध के असर में 7 साल तक होते हैं, फिर उसके बाद वो टूट के एक नए दांत है। मैंने जब इस पे गौर किया तब भी मुझे अल्लाह के ऊपर बहुत प्यार आया, क्योंकि आप देखिए कि अमूमन कोई भी बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो मीठा बहुत खाता है और बच्चों के दांत वाकई ख़राब हो जाते हैं। ये 7 साल की उम्र में तोड़ के नए दांत देना बिल्कुल मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अल्लाह को पता था ये तो होना ही है, तो अब आगे सारी ज़िंदगी इसने खाना है, तो ये ना हो कि वो दांत पहले ही ख़राब कर चुका हो। फिर इसी तरह आप देखिए कि आखिरी उम्र में फिर अमूमन दांत नहीं रहते मुँह में, तो उसकी वजह भी क्या है कि आखिरी उम्र में फिर बंदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खा पाता, मोस्ट लाइकली दलिया और सीरियल्स टाइप पे रह जाता है। तो अल्लाह ताला ने ज़रूरत के मुताबिक हमें चीज़ें दी हैं जो भी दी हैं, और जिस्म का हर उज्व जो है ना ये ज़रूरत के लिए दिया है। अब होता क्या है कि जब बच्चे को इस उम्र में हम शौक़ दिलाते हैं तो एक वक्त आता है कि वो इसके लिए तैयारी करता है। बस आप देखिए कि नमाज की बच्चे को आप कैसे आदत डालें। फर्स्ट थिंग, आपको आदत है। 7 साल तक बच्चा दिन में 5 बार देख रहा था कि माँ बाप घर के बड़े बच्चे एक ख़ास एक्शन में आ जाते हैं, वजू करते हैं। तो आप देखिए बच्चे तो सबसे पहले बल्कि जाके आगे सजदे करते हैं, उल्टी पढ़ें सीधी पढ़ें नमाजें वो ज़रूर पढ़ते हैं। तो घर का माहौल इसमें बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें एकदम शिद्दत नहीं बरतनी चाहिए। अगर आप तरतीब रखें ना तरबियत की, सबसे पहले मैं ये किसी से रेलेवेंट ही है लेकिन मतलब ज़ाहिर है कि बीच में सारी चीज़ें आएंगी, आपको तरबियत में क्या एंगल है रखना। मिसाल है कोई कहता है सख्ती करें, सजा दें, प्यार करें, डांटें, गुस्सा करें, तरतीब क्या है? सबसे पहले अपने बच्चों को असूल बता दें, ये हद है बेटा आप ये कर सकते हैं और बेटा आप ये नहीं कर सकते, ये पहली बचपन से लेके और जब बड़े होंगे तो उसको इस पे रखेंगे। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि उनको ये पता चल जाएगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ रूल्स रखे हुए हैं। मिसाल है आप नानी के घर जा सकते हैं लेकिन वहाँ जाके आपको 5 वक्त नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। बेटा आप खाला के घर जा रहे हैं, आप चले जाइए लेकिन आपको 5 बजे पूरे घर वापस आना पड़ेगा। एक जब हम बच्चों को लिमिटलेस कर देते हैं ना पूछते हैं ना बताते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि बच्चों को एहसास नहीं होता कि हम किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ भी करें आप उनको दें। मिसाल है कि अगर आपका बच्चा घर में नमाज़ पढ़ता है 7 साल की उम्र में, और पढ़नी चाहिए इसमें कोई बुरी बात नहीं, तो अगर वो कहीं भी बाहर गया है तो आप उसको ज़रूर पूछें कि बेटा क्या आपने नमाज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी। फिर इसी तरह 7 साल की उम्र के दौरान ही बच्चे को हर रोज़ सुबह कम अज़ कम कुछ सही लेकिन फजर के वक्त या दिन के किसी वक्त में कुरान पाक की तिलावत का आदी बनाना चाहिए। ये सारी ईमानी तरबियत हो रही है ना बच्चे की, इस वक्त की आदत जो है ये फ़ायदा देंगी। फिर इसी तरह इस उम्र में ही आप अपने बच्चे को अल्लाह के देखने का यानी अल्लाह ताला मुझे देख रहा है اس احساس سے روشناس کرائیں. سورۃ لقمان قرآن پاک میں بہت ہی ایک خوبصورت سورت ہے, آپ میں سے اکثر ساتھی یقیناً اس کے جگہ سے بھی واقف ہے, 22 اور 23 پارے کے قریب کی یہ سورت ہے. اس میں لقمان نام کے ایک حکیم نے اپنے بیٹے کو جس ترتیب کے ساتھ باتیں کی تھی, یہ ہے اصل میں ٹین ایج میں بچوں کو سکھانے والی باتیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کا شعور, اللہ کی ذات کی موجودگی کا پیدا ہونا, ان سب کا آغاز جو ہے وہ شکر سے ہے. آپ اس عمر میں ہی اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کریں. عموماً اس عمر میں بچوں میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے, کیونکہ آپ ہوشیار ہو رہے ہیں نا, تو بات بنانا چاہتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ بات بنتی کوئی نہیں, اماں کو پتہ پھر بھی لگ جاتا ہے. پھر اسی طرح اس عمر میں عموماً کچھ بچے چوری کی عادت ڈال لیتے ہیں, کیونکہ خواہشیں بہت ساری ہو رہی ہیں, ماں باپ دے نہیں رہے, پاکٹ منی جتنا اس میں تو اب سیل فون نہیں آتا اور ان کے فرینڈ کے پاس دو فون ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس عمر میں اخلاقی طور پر یہ خرابی آنے لگتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح اس عمر میں زبان کھلتی ہے, کوئی سلینگ لینگویج, باہر سے کوئی لفظ سننا ہے, یار کا لفظ, ہاں, یا کوئی اس طرح کا لفظ بول دینا کہ جس لفظ کو سن کے تو مجہول فیلنگ آئے. اپنے ہمارے ملکوں میں اگر گلیوں میں بچے پھرتے ہیں تو گالیاں سیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہے وہ عمر جس وقت اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ایک لفظ سیکھیں, ایک ایک بات سنیں. کسی سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ میرے پر میری ماں کا سب سے بڑا ایک احسان ہے, وہ میں نہیں کبھی چکا سکتا. کیا کہا؟ فلاں عمر میں ایسا تھا تو میں نے گالی دی تھی تو مجھے اس دن ماں نے روک دیا تھا کہ آج کے بعد تم نے یہ نہیں کرنا, اور واقعی یہ ہوا. پھر ایک اور خرابی جس عمر میں پیدا ہوتی ہے نا, اب گھر سے باہر کی چیزیں اچھی لگتی ہیں, بے راہ روی, آزادی, یہ پسند آنے لگتی ہے, دل چاہتا ہے کہ بندہ کچھ کرے. اس عمر میں بچے کے اندر وہ فیلنگز آنے لگ جاتی ہیں کہ میں ذرا باہر کی دنیا کو دیکھوں. 7 سے نیچے کا بچہ اپنے گھر کو ایک ہوم سویٹ ہوم سمجھتا ہے, اس کی ہیرو, اس کا ہیرو اس کا باپ ہے اور اس کی ماں ہے اور بھائی بہن اس کے ساتھی ہیں. لیکن اس کے بعد کہنا چاہیے کہ وہ ذرا ہوا لگنے لگتی ہے, سوچ باہر کی. اچھا, یہ 7 سے 8 بھی ہو سکتا ہے اور 8 سے 10 بھی ہو سکتا ہے اور 7 سے 6 بھی ہو سکتا ہے, ماحول اور علاقوں کے ماحول کے ناطے سے. آپ نے بچے کو کتنا کچھ ڈھکا چھپا رکھا تھا اور شروع سے کتنا ایکسپوز کر دیا تھا, یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اس عمر میں آپ کو اپنے بچے کے اوپر اس طرح سے نظر رکھنی چاہیے کہ اس کو اللہ کے دیکھنے کا احساس دلائیں. سورہ لقمان میں جو آتے ہیں وہ کیا ہیں, دیکھیے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, اور یاد کرو وہ وقت جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ بیٹا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہنچانے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے, اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا, میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے, لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں تو میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا, تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا, پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے, اس وقت میں تم کو بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ 1, 2, 3 کر کے بعد میں آپ اپنے قرآن پاک میں چیک لسٹ بنا سکتے ہیں. نوٹ کر لیجیے آیت کا نمبر, آیت نمبر 13 ہے سورۃ لقمان کی, سورۃ لقمان آیت سورۃ نمبر 31 ہے, 21 پارے کے اندر آتی ہے کہ اس عمر میں بچے کو اللہ کا حق پہچاننے کی دعوت دینا, ماں باپ کی تعظیم سکھانا. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم ماں باپ سے اکثر ہو جاتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہم شروع سے اپنے بچے کے اتنے لاڈ دیکھتے ہیں, اس کی اتنی بات مانتے ہیں, اس کی پہلی پکار پہ ہم اٹھ کے اس کے پاس آ جاتے ہیں, اس کے منہ سے بات نکلتی ہے ہم پوری کرنے کو تیار, اس کو آدھی رات کو شاپنر چاہیے, پین چاہیے, ہماری گاڑی نکلنے کو تیار ہے. یہ ساری چیزیں ذہنی طور پہ اس چھوٹے سے بچے کو یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ یو آر دا باس, یو آر دا باس. پازیٹیو پیرنٹنگ کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھا دے, آئی ایم دا باس بیکاز آئی ایم یور مام, ہی از دا باس بیکاز ہی از یور فادر. کیوں بھائی, کیا کیا تم نے, اس نے کیا کیا, پھر بتا دیں کہ تمہیں بڑا ہو گئے نا تو پھر بتائیں گے کہ اس نے تمہارے لیے کیا کیا. جس پیرنٹنگ میں بچوں کو آزادی مل جاتی ہے اور بچے اتنے خود مختار کہ ماں باپ کی بات نہ سنیں, तो याद रखिए कि कल फिर वही हदीस सच होगी कि क्यामत के करीब लौंडी अपने आका को जनेगी। अल्लाह के नबी, ये कैसे होगा? एक लौंडी जब बच्चे को जनेगी तो फिर वो उसकी लौंडी कैसे रहेगी? का मतलब ये है कि औलादें इतनी नाफरमान और गुस्ताख हो जाएंगी कि अपने माँ बाप के साथ लौंडियों वाला सलूक करेंगी, यानी उनको स्लेव समझेंगे अपने। किसी न किसी हद तक आज रास्ते उधर के बनते जा रहे हैं। आप अपने बच्चों पे अपर हैंड रखें, रोक टोक आप करेंगे, करनी चाहिए। इस उम्र में आप उनको ट्रिम करें, बेटा बोल दें। आप मिसाल है, सब कहते हैं मियाँ बीवी फैमिली चलो आज हम बाहर जाके खाना खाते हैं। अब ये बच्चे को आप एक काम काम दे रहे हैं ना, इंजॉयमेंट है, लेकिन इधर आओ, सब बैठो मेरे पास प्यार से, आपकी आवाज़ भी धीमी हो, सॉफ्ट हो, सब बैठो आके। ये नहीं तैयारी कर रहे हैं, चीज़ें रख रहे हैं और साथ बोलते जा रहे हैं। बात मैं जब बोलती रहती है ना, बोलती रहती हैं, कोई सुन रहा कि नहीं सुन रहा, बच्चा उधर है आप उधर है, कभी असर नहीं होगा। मैंने शुरू में आपको अर्ज़ किया, हर वक्त नहीं बोलना। मुझे अक्सर माएँ कहती हैं, कभी कोई बच्चे कहती मैं तो इसको हर वक्त कह कह के थक गई, तो मैं कहती आप इसको हर वक्त कहती हैं, ये आपकी गलती है। हर वक्त आपको कोई कुछ कहे तो आप खुश होंगे? ये अपनी ज़िंदगी से ये लफ्ज़ निकाल दें कि मैंने हर वक्त कहना है। एक वक्त दिल में रखें, कोई बात गलत करें करने दें, करने दें, सब्र करें, करें, कर लें। जहाँ आपको लगेगा ना कि अब ये बात इस तरह की होने लगी है कि आगे नुकसान है, तो फिर स्टॉप इट, बिल्कुल हैंड्स अप, इधर आओ, कम हेयर, उसको बिठाएं, सब बैठ जाओ इधर मेरे पास, और आप बैठ जाए, दरवाज़ा बंद कर लें, उनकी इज्जत नफ्स है उसको ख़राब ना करें, सेल्फ स्ट्रीम है उनकी ज़ाहिर हो, फिर कह दो बेटा लिसन टू मी, आर यू लिसनिंग? फिर उनसे पूछें यस यस अम्मी आई एम लिसनिंग, उर्दू में कहें, पंजाबी में कहें, जो भी कहें आपकी मर्ज़ी, कि हाँ अम्मी मैं आपकी बात में। देखो बेटा आज जो बात हुई है ना, ये आइंदा नहीं होगी। मैंने अभी देखा कि आपने उसको धक्का दिया है, मैंने अभी ये देखा कि आपने वहाँ में कुछ चीज़ें पढ़ी थी उसमें से किसी की चीज़ मुँह में डाल ली है। नहीं, आज के बाद नहीं होगा। ये अगर आपने कर लिया ना छोटी उम्र में, फिर दोहरवाएं, क्या कहा मैंने? आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। बस ये एक वर्कशॉप कर लें छोटी सी, फिर दोबारा ना करें फौरन, फिर थोड़े दिन इंतज़ार करें, लेट देम डू, करने दें, करने दें। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चों को कंसाइज करके, मुख्तसर बात करके, कभी कभी करें, डोज दें हैवी लेकिन काफ़ी दिन के बाद दें, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये जो हमने बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया ना, ये दुरुस्त तरीका नहीं होता। इसी तरह एक और चीज़ नोट करें, जो इस एज में बच्चे के अंदर जिसके जर्म्स शुरू होते हैं, ये बच्चे हैं या बच्ची हैं, अब ये दोनों हैं, इस उम्र में बच्चे दूसरों की तकलीद करने लगते हैं, यानी मुशाबहत कल्चर। बाहर हमारे दोस्त ये पहनते हैं, हमारी सहेलियाँ ये पहनती हैं। इसमें इस उम्र में मोस्टली बच्चों को ज़रा फिक्र लग जाती है कपड़े क्या पहने। इससे छोटे उम्र के बच्चों ने, माओ ने कहीं जाना तो अमूमन माएँ कह रही होती हैं कपड़े पहन लो, ऐसे ही ना, बच्चों को नहीं पहनने होते, वो ऐसे ही जाने को तैयार हैं। तो माएँ अपने शौक की खातिर के जो इतने कपड़े सिलाए हुए हैं, पहनाने, माएँ पीछे पड़ी होती, पहन लो पहन लो, ये नानी ने भेजा था, ये दादी ने भेजा था। आप आज से जाके नोट करें, इस 7-8 साल की उम्र के बाद अब बच्चे क्यूरियस होते, मैं क्या पहनूँगा, मैंने क्या पहनना है, ये मुझे नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है। इस उम्र में ये अंदर से बातें शुरू होती हैं, माहौल का असर, बाहर का और अपने कपड़े। एक और चीज़ इस उम्र में जो इंसान, क्योंकि आप ज़रा अपने जिस्म पे लेके सोचे ना, अब अंदर पीबीटी शुरू होने लगी है, आपकी बलूगत शुरू हो रही है, तो बलूगत ऐसे ही हो जानी है। इतना अहम चेंज आता है ना ज़िंदगी में, लड़कियों की चेंज आप देखते हैं, लड़कों की भी दिखती है। ये चेंज कैसे हुई? ओवरनाइट तो हुई ना? नहीं हुई, इसके सर्कमस्टांसेस बाहर होते हैं। अब आपको करना क्या है, अपने घर में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी अगर आपके बच्चों में कोई एक बच्चा पहले ही 7-8 साल की उम्र का हो गया। नंबर एक, आप शौहर बीवी को अपने ताल्लुकात को लिमिटेड करना पड़ेगा। बस दफ़ा जब हम अकेले रहते हैं, परदेश में हैं, कोई इन लॉज साथ नहीं है, कोई गैर महरम नहीं है, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं या छोटे हैं, काफ़ी हद तक आसानी होती है। बच्चे नहीं हैं फिर तो उसकी हम बात नहीं करते। बच्चों के बाद थोड़ी सी चेंज आती है, यंग बच्चे हैं, छोटे हैं, यानी टीन हैं, लेकिन इसके बाद, बल्कि मुझे जो खबरें मिलती हैं आप लोगों की ज़ुबान से ही, कि अब जो बारने हाथ में थाग में तो बच्चे शायद 4 से 6 साल की उम्र में जाते हैं ना, 6 साल, यानी इस एज में बस बच्चे वो गवाहियाँ देते हैं टीचर्स को कि हमने ये अपने पेरेंट्स को देखा था, ये हमारे पेरेंट्स करते हैं, ये उनकी चीज़ें, ये उनकी हरकतें, ये है। तो अपने आप को रखें, फिर आप अपनी ज़िंदगी को वापस अपने बेडरूम तक ले जाएं। बस जगह बेतकल्फी के नाम पे इस तरह से मिसाल है कि मियाँ घर में आए, बात की, बीवी से भी बात कर ली, थोड़ी बेतकल्फी का इजहार कर लिया, फिर आप केयरफुल हो जाए, फिर मत करें, नेवर डू दिस, क्योंकि उनको नहीं पता. अच्छा, उनको ये भी नहीं पता ये शेम शेम है, ये वो है, ये वो है, नहीं करें. फिर दूसरी चीज़ है कि आपके घर के बच्चे से इसके कभी एक बच्चे के कपड़े दूसरे के सामने ना बदलें. इवन ये तो बचपन की बातों में नोट कर लीजिए कि अपने न्यू बॉर्न बेबी से लेके बड़े होते बच्चों को कभी किसी के सामने नेकेड ना करें. हैरानी की होती है उन माओ पे जो सबके सामने बच्चे को लटाती हैं, उनका पैम्पर चेंज करने लग जाती हैं. फौरन सोचें ये बच्ची नहीं है, ये मैं हूँ, तो फिर सोचें आप कर सकती हैं, दूसरों से कहेंगी. और उससे बड़ी हैरत उस वक्त होती है जब बापों से पैम्पर चेंज कराए जाते हैं बच्चियों के. कैन यू बिलीव, कैन यू इमेजिन, रिश्ता क्या है, कैसे बेटे का माँ तो कर सकती है, फितरत है, लेकिन बेटी का पैम्पर बाप नहीं साफ कर सकता, मजबूरी है, वो साथ दे रहे हैं आपका जी कि आपने जॉब पे जाना है तो अब आपको तो करना पड़ेगा. और जो यहाँ असूल हम पढ़ते हैं कि बच्चों को बच्चे के बाद एक साल की छुट्टी मिलती है, और आप शायद कुछ महीने बाप के लिए लाजमी कर दिए गए हैं और माँ फिर उसके बाद जॉब करेगी, इसी तरह की बातें हैं ना, फ़र्क रखना पड़ेगा. आप इस उम्र में देखेंगे कि आपके बच्चों में जिनसी रुझान पैदा होंगे. कभी आपके बच्चे इस उम्र के दोस्त सहेलियाँ इकट्ठे के खेल रहे हो ना, तो 15-20 मिनट पर जाके एक दफ़ा ज़रूर देखें क्या कर रहे हैं, उनकी नज़रें किधर हैं, वो क्या देख रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है जो वो देखते हैं, कार्टून्स वॉच करते हैं, आपने देखने हैं पहले खुद देखें. कोई कार्टून आपने अपने बच्चों को दिखाने हैं, म्यूज़िक से पाक हैं, इस्लामिक हैं, खुद देख लें एक दफ़ा, क्या फ़र्क पड़ेगा. आप एक दफ़ा देख के पहले चेक करें मैसेज क्या है, इसका असर क्या होगा, फिर उनके साथ उस बात को लेके जाएं. फिर अमूमन फिल्मों का अगर घर में माहौल है, घर में चल रहा है, लगे हुए. अब मिसाल है, आप कहते हैं देखें आप तो आइडियल बातें करती हैं, हमारा तो आइडियल ही नहीं है माहौल. मिसाल है कि अल्लाह ने हमें दीन से जोड़ा, अब हमें समझ आ गई कि ये तो बेकार चीज़ें हम देखते थे, इतने घंटों बैठे थे, अब आपने फिल्में छोड़ दी देखनी. मियाँ वैसे ही घर में नहीं होते थे, आपके बच्चे बच गए, खुद ही बच गए. बच्चों का एक टाइम रख दें कि इस वक्त में आप कार्टून देख सकते हैं, इस वक्त के बीच में आप गेम खेल सकते हैं, दैट्स इट. लेकिन अब करें क्या, घर में मिसाल है सास ससुर है, बड़े फैमिली के होते हैं, और जब बचपन अच्छा नहीं गुजरा होता ना और जवानी बेकार गुजरती है, तो माजरत के साथ हमारे दौर के जो आज के बड़े हैं ना, उनके पास भी कोई काम नहीं है. वो सोचते हैं सारे बच्चों की शादी होगी, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें सुरखरू कर दिया, सारी बेटियां अपने घर में चली गई, शुक्र घर एक इधर भी बन गया, पाकिस्तान भी बन गया, अल्लाह तेरा शुक्र है, गाड़ी इधर भी है उधर भी है. और अब इस वक्त उनके पास काम क्या है कि करेंगे बेटे, चलो जी वो टीवी दिखा लें, वो खबरें सुन लें. भाई आपने खबरें क्या करनी है, आप सुन के आप अगली खबरें देखें. लेकिन ये बहुत बड़ा मसला आज हमारे कल्चर में है कि बंदा बूढ़ा हो के भी इन चीज़ों से फारिग नहीं होता. अब करें क्या, ये एक इशू साथ ही ले लीजिए. आपके जवान होते हुए बच्चे हैं, अर्ली टीन एज है बच्चे हैं, आप उनको नहीं दिखाना चाहते. एक सूरत तो क्या कि आप घर में झगड़ा डालें. अच्छा होता क्या कि जब आप मना करते तो बच्चे दादा दादी के पास चले जाते हैं फिर उनके प्रोटेक्शन में. अब अगर आप उनके सामने बच्चे को खींचती हैं तो उनको बुरा लगता है अगर आप बोलती हैं. अब ये सारी सिचुएशन आप किस तरह हैंडल करें, पहले तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिकमत दे. फिर दूसरी बात है, अगर आप माँ होने के नाते इसमें क्यूरियस है ना, तो आप अपने शौहर को ना डालें. देखिए आपके साथ ससुर है ना, इज्जत एहतराम और प्यार से आप खुद उनसे बात करेंगी ना, तो गुनाहगार नहीं होगी. लेकिन अगर आपने अपने शौहर के दिल में कोई बात डाल दी, ये बच्चे वाली बात हो या किसी भी एंगल की, सास ससुर से बात करनी है, कोई घर का माहौल ख़राब है, सास की मसला है, कोई वो बोलती बहुत है, या कोई नन ने कुछ मसला किया, आप खुद डील करें, दुआ मांगें. बच्चियों को ससुराल भेजने से पहले ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखानी चाहिए. क्या करें आप, अब आप देख रहे हैं कि एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, आप बुलाते हैं. पहली बात तो ये कि जिस वक्त वो टीवी चलाते हैं, आप उस वक्त अपने बच्चों को कोई अल्टरनेट देते हैं. मसलन शाम को ही बच्चों को थोड़ा सा वक्त मिलता है ना, आप समझते हैं कि जी अभी इधर घर में ड्रामा चलना है, फिल्म चलनी है, कुछ भी है, बच्चे अब स्कूल से आ गए, काम कर लिए, खा लिया, पी लिया, अब ये एक घंटा इनकी इन्जॉयमेंट का. बाहर ले जा सकें तो बेस्ट देंगे, चलो बच्चे बाहर चलते हैं, चलो आओ हम बाहर घूम के आते हैं, वॉक करके आते हैं, कोई भी चीज़ लेनी है देनी है, एक सूरत यह है. दूसरी सूरत है नहीं तो आप उस वक्त को अपने बच्चों के साथ स्टोरी टाइम बना लें, आओ बच्चों इधर आओ, एक्टिविटीज़, बच्चों को कलर्स करने अच्छे लगते हैं, यानी गिव देम ऑल्टरनेट, ये कर लीजिए. अब वर्स्ट है इससे भी मामला, किसी घर में हर वक्त ही टीवी चलता है, अब क्या करें, ना तो बच्चों के सामने, ना मियाँ के सामने, बल्कि अकेले में। एक दिन पहले उनको बता दें कि अम्मी या अबू या अम्मी अबू दोनों हैं, जिस तरह कहलाता है कि अम्मी जी मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे आप बता दें कि मैं कब बात करूं। वो खुद ही समझ जाएंगे कि कोई बात करनी है। फिर बड़े अदब से, रो के, एहतराम से, इज्जत से कि अम्मी देखें, हम सब इस दुनिया में जो भी आपको पता है, अब हमें होश आ रही है, हमने इधर उधर देखा है, कितनी गलतियाँ हुई हैं तरबियत में, अब मैं चाह रही हूँ कि इन बच्चों को अच्छा करें, आप क्या सोचती हैं? अम्मी जी आपका क्या ख्याल है कि ये पोते बच्चे आपके कैसे पोते बने, नवासे कैसे बने, पोता कैसा हो? हर अब्बा अम्मी जी यही कहेंगे कि ये बहुत नेक बने। तो कहना कि फिर आप बताएं कि इसमें हम मिल के क्या काम करें। फिर आप उन्हें डायरेक्ट बिल्कुल ना कहें, आप टीवी चलाते हैं, आप फिल्में देखते हैं, आप गाने सुन नहीं, आप उनको इस तरह से बताएं कि आप मुझे बताएं कि इसमें आप क्या करें। और यकीन करें, इतना सिक्योर वे है, जिस बंदे से आपको मुखालफत का डर है ना, मिसाल है कि मुझे पता है कि मैं ये काम करने लगी हूँ, ये बहुत मुखालफत करेंगी, या मैं इनको जिस वक्त पता चलेगा कि मैं ये काम कर रही हूँ, मतलब बात बहुएं होती हैं कोई काम करती है ना, तो उनको डर बड़ा होता है कि सास को पता लग गया तो पता नहीं क्या होना है। बजाय इसके कि आप वो काम करें, फिर आपकी सास तक बात जाए, फिर वो कुड़ें, फिर आपसे लड़ाई करें, फिर आपके मियाँ को बताएं, आप खुद बता दें अम्मी जी मैं ये करने लगी हूँ, अम्मी जी ये करना है, ये मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ, ये मैं पढ़ा रही हूँ। अच्छा अम्मी जी आप मेरी जगह हो तो आप क्या करें? अम्मी अगर आपके अब बच्चे, फिर अम्मी जी ये बताएं, अगर आपके बच्चे अब छोटे होते दोबारा तो आप भला क्या सोचती? उनको बता दें, फिर उनको प्लान्स दे दें, जब बच्चे घर पर नहीं आप जैसे भी करें, या उनको टीवी कॉरिडोर से निकाल के उनके कमरे में दे दें और उनको कह दें कि आप सुने, जो देखें आपकी मर्जी है, लेकिन बच्चों को अंदर ना आने दें, बजाय इसके कि मैं खेजूँ, वरना होगा क्या, नानी नाना दादी दादा उनको लगेंगे मोहसिन और माँ लगेगी उनको दुश्मन। इस तरह कौंसिल करें, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, हंस पड़े, रो पड़े, प्यार करें। यकीन करें ये सास ससुर बड़े प्यारे रिश्ते, ये सिक्योरिटी है। आप फील करें ना, आपकी शादी जब नहीं हुई थी, माँ थी ना, बाप भी था, भाई भी था, बहन भी थी, मोस्टली घरों में होता है ना, शादी हुई, घर के बदले घर मिला, माँ के बदले मिल गई सास, बाप के बदले मिल गए ससुर, भाई के बदले मिल गए देवर, बहन के बदले मिल गई नंद। एक रिश्ता पहले नहीं था आपका और वो मियाँ का था। सिर्फ एक बंदे को अगर आप गोल बना लें और बाकी रिश्तों को जस्ट ट्रांसफ़र टू दें, ट्रांसफ़र कर दें, माँ की सारी मोहब्बतें सास में, बाप की उधर, उसकी उधर, ये कभी नहीं हो सकता कि आप सच्चे दिल से किसी के साथ ऐसा करें तो अगला फिर आपके खिलाफ हो। और अगर आपकी सास आपको कोई बात सुनाती, सुन ले, कभी माँ ने नहीं सुनाई। बच्चे इससे भी बहुत मुतासर होते हैं घरों में, कि घर के बड़ों के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं। तो टैकल कीजिए, अंदाजे से, खूबसूरत तरीके से बात करें। कभी अकेले में ना पूछें बच्चों से, दादी क्या कर रही थी, वो फूफो क्या कर रही हैं, वो गए थे फूफी के घर, उधर क्या हुआ, क्या खाया था। अक्सर बच्चे कभी कभी स्लीप ओवर के लिए चले भी जाएँ तो माएँ आती फिर एक एक बात पूछती हैं, क्या हुआ था, क्या किया था, वो नानी किससे बातें कर रही थी, फूफो ने किससे बात की थी। आप तो खुद उनको जासूस बना रही हैं। जो अच्छे अखलाक आप कल उनमें पेश करना चाहती हैं, आज बना के दिखाएं। कभी ना बच्चों से पूछे क्या खाया था, क्या नहीं खाया। बच्चा 10 चीज़ें खाएगा ना तो आगे ये कहेगा मैंने कुछ नहीं खाया था, या वो उन्होंने तो मुझे नहीं दिया था, इल्ला माशाल्लाह। तो इस तरह की अखलाकी तरबियत करेंगे फ़ायदा होगा। फिर इस उम्र में एक चीज़ जो अपने बच्चों में आप डाल सकते हैं, ख़ासतौर पर बेटों में भी और बेटियाँ, तो ऑफकोर्स के नज़रें झुकाओ, फाटक बंद कर दें, मेन गेट क्लोज कर दो। जितनी आंधियाँ बाहर चल रही हैं ना, जितने तूफान है, फितने हैं, ये 7-8 साल की उम्र में अंदर आते हैं। आपको टीनेजर बच्चों से डील करना मुश्किल ही नहीं रहेगा अगर 7-8 साल की उम्र के बच्चों की आपने लिमिट्स रख दी। लोअर द गेज, सूरत नूर की आयतें ऐसे प्यार मोहब्बत में सुना दें, कितनी करें वो करें। मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक माँ सुना रही थी कि माशाल्लाह खुद भी पढ़ रही हैं, बच्चा भी उनका इधर भी आते हैं सैटरडे क्लास में, तो सुन ली होंगी ये बातें। तो वो बच्चा जो है ना, वो अब इस पर ट्रायल कर रहा है, तो एक दिन आके कहता है, अम्मी ये तो बड़ा मुश्किल है नज़रें नीचे रख के ड्राइविंग करना, या मैं नीचे तो मैं गिर जाऊँगा। फिर उन्होंने उसको समझाया कि पूरा वक्त नीचे नहीं करनी होती, मकसद ये है कि कहीं कोई ऐसी इनडिसेंसी वाली चीज़ दिखे तो नज़रें झुकाओ। करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, इस उम्र में करें। पानी सर से गुजर जाता है ना, फिर फ़ायदा नहीं होता। नेप दईवल इन द बर्ड, बुराई को उसकी जड़ से रोक ले। और इस उम्र में हर चीज़ की फिक्र करें, अपनी फैमिलीज की पार्टीज़ को, दावतों को, ईद के फंक्शंस को अलग अलग रखें, बेटियां अलग खेलें, बेटे अलग खेलें, लड़के इस तरह से, फिर एक ऐसे देख रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। इस उम्र में मोस्टली कज़न्स के अफेयर शुरू हो जाते थे पाकिस्तान में, ये तो शुक्र है यहाँ के लोगों ने कज़न मैरिज को पसंद नहीं किया, तो उसकी वजह से ये खराबियाँ होती हैं। तो बहरहाल ये थी चंद बातें जो बच्चे के ईमान की तरबियत और उसके अखलाक के साथ थी। शुरू में तो हर चीज़ फ़न होती है ना बच्चों के लिए, लेकिन पुश नहीं करना। एक बात याद रखें, कभी बच्चे को इस पे पुश नहीं करना कि अब तुम नमाज पढ़ रहे हो, अब तुम ये करोगे। इवन छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, बस लोग 3-4 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं उन पर बोझ डालना, फिर पता क्या होगा, बाज़ माओ साहब ने सुना ये छोटी थी तो बहुत बात मानती थी, अब बड़ी हुई है तो अकड़ने लगी है, आपने छोटी टांगों पे ज़्यादा बोझ डाल दिया। जी आप जी, मतलब वही बात है ना कि एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, अमल लफ्ज़ों की नस्बत ऊंचा बोलते हैं। जितनी बड़ी बात बतानी है ना बच्चों को, उतना आहिस्ता बोलें।